ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद्भागवत के षष्ठ स्कंद के सप्तदश अध्याय के 33 नंबर श्लोक पाठ करेंगे।
न हस्यास्ति प्रिय कश्चिन् अप्रियस्व परोऽपि वा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सर्वभूत प्रियो हरिः।
शब्दार्थ
ना
नहीं,
ही
निसंदेह,
अस्य
ईश्वर का,
अस्ति
है,
प्रिय
अत्यंत प्यारा,
कश्चित
कोई,
ना
नहीं,
अप्रिय
जो प्रिय न
हो,
स्वः
अपना,
परः
पराया,
अपि
भी,
वा
या,
आत्मत्वात्
आत्मा
के भी आत्मा
होने से,
सर्वभूतानां
सभी
जीवात्माओं
का,
सर्वभूत
सभी
जीवात्माओं
के लिए,
प्रियः
अत्यधिक
प्रिय
हरि
ही
श्री भगवान।
अनुवाद
एवं तात्पर्य
श्रील प्रभुपाद जी
के द्वारा।
अनुवाद,
भगवान
को
न कोई अति
प्रिय है
और न
कोई
अप्रिय।
उनके
न तो
कोई
स्वजन है
और न
कोई पराया है।
वे
वास्तव में
समस्त
जीवों के
आत्मा है,
आत्मा के
भी आत्मा है।
इस
प्रकार
वे समस्त
जीवों के
कल्याणकारी
मित्र
तथा
उन सबों के
अत्यंत
प्रिय है।
तात्पर्य,
श्री
भगवान का
दूसरा
स्वरूप
समस्त
जीवात्माओं
का परम
आत्मा है।
जिस
प्रकार
स्व
अत्यंत
प्रिय होता है,
उसी
स्व का
परम स्व
और
भी अधिक
प्रिय होता है।
प्रत्येक
के लिए
समान
मित्रवत
परमात्मा
का कोई
भी शत्रु
नहीं हो सकता।
भगवान
तथा जीवात्माओं
के बीच
शत्रुता
या
मित्रता का
भाव
ये माया
के बीच में
आ जाने
के कारण है,
माया
का बीच में आ जाने
के कारण है।
क्योंकि
भौतिक
प्रकृति के
तीन
प्रकार के गुण
यह
हस्तक्षेप करते
हैं,
जिसके
कारण
भिन्न भिन्न
संबंध
उत्पन्न होते
हैं।
वास्तव में
शुद्ध जीवात्मा
सदैव
ईश्वर को
अत्यंत प्रिय है,
और उसे भी ईश्वर प्रिय होता है। वास्तव में शुद्ध जीवात्मा सदैव ईश्वर को अत्यंत प्यारा, अत्यंत प्रिय होते हैं और उसे भी ईश्वर प्रिय होता है। पक्षपात अथवा शत्रुता का प्रश्न ही नहीं उठता। ओम अज्ञानमतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्णपादान सहगणललिता श्री विशाखानितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आप में से अधिकांश शायद आज ही भागवतम क्लास में आए होंगे, तो प्रसंग थोड़ा सा आपको बताना उचित रहेगा। ये प्रसंग इस प्रकार है, भागवत के छठा स्कंद में चित्रकेतु के प्रसंग चल रहा है। महाराज चित्रकेतु के पूर्वजन्म में है, इसी प्रसंग में उन्होंने अपने नारद जी से मंत्र प्राप्त करके भारी तपस्या के बल पर भगवत कृपा से विद्याधर के अधिपति पद को प्राप्त कर चुके हैं और स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। भगवान के द्वारा एक स्पेशल प्लेन उनको दिया गया था जिसमें ना पेट्रोल भरना पड़ेगा ना पायलट की जरूरत है, ऑटो प्लेन। तो उसको उसमें सवार हो करके महाराज चित्रकेतु और मेरु के घाटियों में विचरण कर रहे थे। भगवान की तपस्या करने से क्या क्या नहीं प्राप्त होता, लेकिन वो जैसे कैसे किस्मत ऐसा था पहुंच गए जा करके जहां भगवान शंकर का जागा था। भगवान शंकर ने क्लास ले रहे थे और क्लास में बड़े बड़े सिद्ध जोगी देवेंद्र मुनिंद्र से बैठे हुए थे। शंकर जी क्लास में ऑर्डिनरी तो हमारे जैसे तो होंगे नहीं स्टूडेंट सुनने वाला, तो उनके हिसाब से सुनने वाले से बैठे थे। एक महा जोगिंद्र मुनिंद्र से बैठे थे। भगवान शंकर व्यासासन पर बैठे थे, गोद में अपने पत्नी देवी पार्वती को आलिंगन करते हुए बैठा करके लेक्चर दे रहे थे। सभी सुन रहे थे, नोट कर रहे थे, सीरियसली क्लास वाज सीरियस। ओ घूमते फिरते बाई प्लेन जा रहे थे चित्रकेतु महाराज, उनके नजर पड़ गया ये क्लास हो रहा है। नीचे उतरे, भक्त है और नीचे उतरे, नजर पड़ गया जो क्लास दे रहे थे भगवान शंकर, वो ऐसी स्थिति में बैठे थे पत्नी की गोद में लेकर के अलिंगन मुद्रा में बैठकर क्लास दे रहे थे। पता नहीं उनको क्या लगा और उनको सुना सुना करके, पार्वती को सुना सुना कर उसके बाजू में जा करके गाड़ी पार्किंग की उनके पास में जा करके ठिठा करके हंसने लगे और उनको देखा देखा कर कहने लगे, अरे यार देखो ये संपूर्ण संसार के धर्म के शिक्षक है, जगत गुरु है। अरे उनको इतना ही शर्म नहीं आता, अरे इतनी बड़ी सभा में बैठ करके अपनी पत्नी को गोद में चिपका कर बैठा कर बात करता रहता है, क्लास देता रहता है। अरे क्यों ऑर्डिनरी जनरल पब्लिक में भी लोग को भी रिक्शा बैठ कर जाने के लिए डरते हैं, लोई बाजार जाने के लिए, बोले कोई देख ना ले, है एकांत में बात तालाब करते हैं, लेकिन ये तो भरी सभा में और बड़ी बड़ी लोग सब वैराग्य चुड़ामणि से बैठे हैं जटाधारी, उनके बीच में इसी अवस्था है, शर्म का हद हो गया उनका। तो ऐसे भली बुरी कहने लगे शंकर जी के प्रताप में, उनको ज्ञात था कि नहीं भगवान जाने शंकर जी की महिमा का शायद उनको अज्ञात हो, तो इसलिए ऐसे ही करके कहे। तो शंकर जी सुने और देखे हंस दिए, तो अगाध बोध हैं उनके लिए ये सब कमेंट क्रिटिसाइज से परे, वो लोग वो तो उनसे परे, उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, हंस दिए, कोई भ्रुकुंचन कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना कोई गुस्सा कोई कुछ, नेवर माइंड, वो क्लास चालू रखे। जो क्लास सुन रहे थे वो बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र वो भी देखे, वो भी छोटे मोटे महात्मा नहीं थे, वो भी सब परे थे इस चीज में, वो भी कोई माइंड नहीं कि कुछ बोले नहीं, कोई टिका टिमिट किए नहीं, कोई कुछ बोले नहीं, वो भी चुपचाप अपने क्लास में नोट करने सुनने लगे। लेकिन देवी पार्वती को लग गया है बात, बोले अरे ये कहाँ का क्षत्रियाधम आया हमारे पति को सिखाने के लिए, हमारे पति को धर्म का ज्ञान नहीं है, ये शासन करके शिक्षा देने के लिए आया कहां से आप इनको। पार्वती ने सहन ना करके इस प्रकार भाषा में कटु भाषा में उनको बोले, बोल करके क्रोध करके उनको अभिशाप दे दी, बोले अरे धूर्त कहीं के तेरे इतने साहस, तू नहीं जानता मेरे पति के प्रभाव को, अरे इतने बड़े बड़े सब ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा तक मनु कपिल सनकादि ऋषि तक नारद आदि सब बैठे हुए हैं, व्यास आदि, वो धर्म के ज्ञान नहीं तू ही जानता है, क्षत्रिय धर्म कहीं के आगे गाड़ी में चढ़कर ऐसी बात करता है, फिर इस प्रकार के व्यवहार ये जो अपराध किया महादेव के चरण में, इस कारण तू निम्न असुर जोनि में चले जा, असुर जोनि में असुर शरीर में रहकर जो कष्ट भोगेगा तब पता चलेगा, फिर कभी इसे भूल नहीं करोगे, महापुरुषों को ऐसे अपराध इसे क्रिटिसाइज नहीं करोगे। पार्वती डांट कर कभी साफ दे दी, इसे गाली दी, गाली गलौज देकर अभिशाप, भरी सभा लोग सब देख रहे थे, क्लास डिस्टर्ब हो गया भाई, क्लास के बीच में बोलचाली हो गई, बोली भाई आप सब देख रहे हैं महादेव पार्वती की ओर, चित्रकूट की ओर, वो भी खड़ा, वो जैसे वो गाड़ी में बैठे बैठे इसे बोल रहा था, जैसे पार्वती ने उनको इसे डांट कर साफ दे दी, गाड़ी पार्किंग कर से गाड़ी से उतर गए, गाड़ी से उतर करके आके पार्वती की प्रणाम की, बोले मैडम थैंक यू, हाँ आपने मुझे अभिशाप दिया इसलिए मैडम थैंक यू, उनको धन्यवाद धन्यवाद दिए और उनको प्रशंसा किए, बोले देवी सच बात तो यह है कि जीव का जो गलती सलती होता है, जो दुख सुख जो गड़बड़ियां सब होता है, ना हम चाहकर कोई करते हैं, कोई बुरा वरना नहीं चाहता, ना खुद आत्मा करता है ना भगवान करते हैं, लेकिन नहीं भगवान के एक बीच में मीडियम एजेंट है, मध्यस्थी जिसको कहते हैं माया, वो भगवान की शक्ति है, इसी के कारण सारे नाटक चल रहा, जितने सारे गड़बड़ियां जितने सारे अज्ञान सारे द्वंद्व सब इस माया शक्ति बीच में आकर के ये सब करा रहा है, जिसके कारण उसी के संबंधित होते हुए हम सब सुख दुख नाना प्रकार भोग कर रहे हैं, इसलिए प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कीजिए, मैं भी माया के प्रभाव से आ गया, भगवत माया के कोई माइकलाल नहीं है, उनके सामना करके कस कर जाए, ये भगवत कृपा हो वही छुड़ा दे, नहीं तो ये नहीं छूटता उसका प्रभाव, कोई नहीं चल सकता, तो इसलिए प्लीज एक्सक्यूज मी। ये कह करके ये भी कहे कि मैडम ऐसा मत समझिए कि मैं आपकी मस्करी कर रहा हूं, कि अब खुशामत कर रहा हूं कि आप मुझे साफ दिए थोड़ा प्रसन्न हो जाए, नहीं 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 नहीं, मुझे साफ मंजूर है, मुझे साफ से निवृत्ति के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, थैंक यू आप जो दिए मेरे ठीक है चलेगा, वो कह करे गाड़ी में बोर्ड हुए गाड़ी स्टार्ट के चल दिए, कह करके पार्वती की प्रसन्न करके क्षमा याचना किए प्रणाम किए, और ये भी बोले कि ये मत समझो कि मैं आपके क्षमा याचना प्रणाम कर रहा हूं कि आपके कृपा मुझे हो जाएगा, आप थोड़ा साफ से मुझे थोड़ा रिहात कर देंगे कि आप कुछ काउंट्रैक्ट करेंगे, नो 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 नो, आप जो साथ दिए और भी कुछ हाई डोज देना है दे दीजिए, आई डोंट केयर, केयरलेसली गाड़ी में बैठे और चल पड़े, खड़े होकर तो वेट नहीं किए मैडम कुछ बोलेगी कि और कोई कुछ बोलेगे, ठीक है कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास, थैंक यू मैडम कहकर गाड़ी में बैठे चल दिए, जब वो चल दिए निष्प्रह होकर के पार्वती जी बल बल करके देख रही है, भाई ये तो भला आदमी है, मैं इतने भारी अभिशाप दिया गाली दिया उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, थैंक यू करके स्वीकार कर लिया, अरे इतने बड़े अभिशाप लोग काम जाते हैं, अब कोई बोल दे तुम असुर जन्म में चले जाओ, इतने बड़े देव गंधर्व विद्याधर के शरीर में था और सीधा डाउनफॉल असुर जन्म में डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ा, वही मनोभाव से बिल्कुल केयरलेसली बैठ के थैंक यू करके हाथ जोड़ के मेरा गलती हो गया माफ कर चल गई,
और ये भी बता दिया कि ऐसे मत समझिए कि मैं आपको माफी मांग रहा हूं, आप कुछ मुझे ग्रेस करेंगे, नहीं, कोई आई डोंट वांट योर ग्रेस, ऐसे बोल के बैठ गए। बाहर बोली तो सांप तो दे दी, लेकिन आश्चर्य हो तो बोले ये भला आदमी है, मेरे सांप को कोई परवाह नहीं उसका। तब शंकर जी देवी की ओर देख रहे थे कि देवी का अति आश्चर्य है, तो भगवान शंकर कह रहे हैं ये जो श्लोक, ये भगवान शंकर की उक्त है, भगवान महादेव के द्वारा कहा गया श्लोक है। कुछ श्लोक की कड़ी आप सुने होंगे, 5-7 दिन से जो श्लोक चल रहा है, इसे भगवान शंकर ही कह रहे हैं। प्रसंग इस प्रकार था, भगवान शंकर चित्रकेतु तो गाड़ी चढ़ के चले गए, लेकिन देवी के जो वहां आश्चर्य और जो क्लास में बैठे थे बड़े बड़े योगी मुनि, उनका आश्चर्य, उनको मिटाने के लिए भगवान शंकर स्वयं भगवत तत्व और भगवत भक्त भक्त के महिमा बता रहे हैं। बोले देवी देख लिया ना आपने, आंखों देखा, देख लिया ना, डायरेक्ट आंख में देख लिया, हमारे श्री हरि के इसी भगवान के जो दासानुदास होते हैं, दास होते हैं उनके, दास दास दासानुदास होते हैं उनके, यही से ही स्वभाव होता है, दे डोंट केयर। कोई सांप दे, जो नारायण परायण, जो नारायण परायण हो जाते हैं तो उनको स्वर्ग नरक कुछ नहीं फर्क पड़ता, अपि तुल्यार्थ दर्शिना, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जहां जहां काम तो एक ही करेंगे, चाहे वृंदावन में रहे, चाहे अम्बाला में रहे, चाहे हरियाणा में रहे, चाहे और कहीं रहे, हरे कृष्ण ही करना, कौन सा ऐसा कर, जहां भी कर रहे वो भी यही करेंगे, वो भी सुबह उठते हैं वो भी सुबह उठेंगे, हरे कृष्ण करेंगे, है ना। तो इसलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां भी जाए एक ही काम, तो इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भगवान शंकर देवी पार्वती को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि देवी अब देख तो लिया ना, समझ लिया ना अभी, कि हमारे प्रभु श्री भगवान के जो अनुचर गण होते हैं उनका ऐसे ही गुण होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सुख के दुख में के गड़बड़ में, दे डोंट केयर, क्योंकि उनके मन हरि शरण में लगा हुआ है, तो उनको ये सबसे क्या फर्क पड़ रहा है। कोई तकलीफ की परिस्थिति आ गया, कोई अनुकूल हुआ, कोई प्रतिकूल हुआ, कोई ये हुआ, गाली दे दिए, कोई अभिशाप दे दिए, कोई वरदान दे दिए, कोई कुछ मिल गया, कोई लस हो गया, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क, जब भगवान के चरण में मन लगा है, ये सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में उनको कोई डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आप स्वयं देख ही लिया, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मैं देवी आपको कह देता हूं, हमारे जो प्रभु हैं उनके दासों के ही अनुभव के इसलिए होता है कि हमारे प्रभु का गुण क्या है। उसके पहले ये श्लोक कहने से पहले भगवान कहते हैं, बोले हरि के गुण क्या कहूं, हम लोग सब हरि के, बोले चित्रकेतु जो हैं, बोले मैं पहचानता हूं उनको, वो हमारे गढ़पत्र है, बताए भगवान, बोले मैं जानता हूं उनको, विद्याधर के अधिपति है, भगवान शंकरषण के अनुचर है, मैं भी उनके अनुचर हूं, मैं भी शंकरषण के अनुचर हूं, वो भी शंकरषण के अनुचर, और हम बोले मैं और जितने बड़े बड़े, जब भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, बाकी और बाकी जितने महात्माओं को तो क्या बताएं, बोले जितने सारे महात्मा के नाम में बताओ सारे मानो, बोले कोई अभी तक हमारे प्रभु ठीक ठीक से नहीं समझे, नहीं समझ पाए, जान नहीं पाए, वो कितने उदार है, कितने दयालु है, कितने महानुभाव, क्या महानता है, बोले हम ही अभी पकड़ नहीं पाए, अभी भी प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु पकड़ में नहीं आ रहा है। और ये सभी ऐसे ही है, लेकिन जो जो मन लगा कर रखे हैं उनका स्थिति ऐसा ही है। तो इसलिए मन में कुछ ऐसे शंका मत करो, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता, हाँ जैसे मैं हूं, मैं भी मेरे प्रभु के दास हूं, इसलिए वो मुझे गाली दे दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं कुछ माइंड नहीं किया, मुझे फर्क नहीं पड़ा, और तुम अभिशाप दे दिया उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, भगवान के दास होने से ऐसी होता है। कोई आपको क्रिटिसाइज करे नो प्रॉब्लम, कोई अभिशाप दे दे तब भी नो प्रॉब्लम, कोई वरदान दे दे तब भी नहीं प्रॉब्लम, उसके मतलब नहीं होंगे, ये सब नहीं चाहते, निस्पृह है, कोई आशा आकांक्षा स्पृहा नहीं है, केवल एक ही आशा है, मैं हरि के चरण को मन लगाऊं, उनको प्रसन्न करूं, बस एक ही एजेंडा है, कि दूसरा कुछ है ही नहीं उनका मन में। तो इसे कह करके पार्वती आश्चर्य को सुन रहे, ऐसा बोले आश्चर्य क्यों हो रहा है, इत्थम भूतो गुणो हरि, बोले मेरे हरि के गुण ही ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, मेरे हरि के गुण ही ऐसा होता है, इस कह करके इस श्लोक को कहते हैं। ना ही अस्सास्ति प्रिय कस्ति, हरि के गुण कैसे होता है, हरि तत्व कह करके इस श्लोक कहते हैं, मेरे हरि का ना तो कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है, ये स्वयं निर्विकार है, ये स्वयं समता में रहते हैं, सभी के प्रिय है, कोई उनका प्रिय नहीं है, किसी दूसरे को भी नहीं करते, ये हरि का हरि तत्व कहते हैं। भगवान शंकर महादेव स्वयं अपने प्रभु के एक गुण बताते हैं इस श्लोक में, क्या है प्रभु के गुण, ना ही अस्य, मतलब भगवान के नाम अस्य में ईश्वर है, अस्ति प्रिय कश्चिन, ना तो कोई प्रिय कोई है ना कोई अप्रिय है, स्व परोपिबा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सर्वभूत प्रिय। यह एक उदाहरण देते हैं भगवान शंकर ने, भगवान की इस तत्व को बताने के लिए, गुण को विशेष समता को बताने के लिए भगवान शंकर ने एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण आप समझ पाएंगे, थोड़ा क्रिटिकल है, आत्मा आत्मा भूता परो आप बोलेंगे क्या, ये मैं इसको सादा भाषा में कहने के प्रयास करता हूँ, शायद आशा करता हूँ समझ लेंगे। भगवान शंकर ये उदाहरण देते हैं, बोलते हैं कि देवी आप और हम क्या दुनिया में जितने प्राणी है सबको किसी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं जानते हैं आप सभी भी, हम आप सभी सबसे ज्यादा किसको पसंद करते चाहते हैं, अपने आप को करेक्ट, ये जो बोलते हैं कि ओ आई लव यू, ये सब पैखानी है, कुछ नहीं, अगर दोनों भी एक घर में है, अभी आग लग जाए देखना फट से वो कूदेंगे, बाद में सोचेंगे उनके बारे में, पर आपने आप को सबसे प्रिय है, आपने आप को सबसे प्रिय है, इसीलिए तो कहीं थोड़ा कांटा गड़ गए, कितने फूंक मारे, डिटल लगाए, कितने क्या क्या करते हैं, बहुत प्रिय है आपने, क्यों, वो बोलते हैं कि आपने आप को, हम सभी अपने आप को इतने क्यों प्यार करते हैं, क्यों अपने आप को प्यार करते हैं, क्यों, कि उनके अंदर सर्वप्रिय सबके प्यारा से हरि बैठे हैं, प्रत्येक प्राणी अपने आत्मा को सबसे प्रिय होता है, इतने प्रिय लगता है आत्मा, क्यों, क्योंकि आत्मा परमात्मा के साथ संबंधित है, वो आत्मा के आत्मा भी कौन है, परमात्मा, और ये परमात्मा के आत्मा कौन है, श्री हरि, ये हरि के अंश ही तो परमात्मा है ना, ये हरि के अंश है, हरि ही स्वयं एक रूप में सर्वभूतानं सभी के हृदय में सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान गीता में कहते हैं मैं अहम अहम सर्वस्य हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं ही बैठा हूं, कैसे परमात्मा होकर के अणु परमाणु के अंदर भी बैठा हूं, इसीलिए सब अपने आप को टेक केयर करते हैं, धुलाते हैं, नहलाते हैं, ड्रेसिंग पेंटिंग करते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, खिलाते हैं, ये सब करते हैं अपने आप को छोटे, बिकॉज मैं हूं सबके प्यारा, ये उनको दिमाग में किसी का नहीं है, हम लोग इतने मूढ़ बुद्धि है, हमको पता नहीं कि हम क्यों अपने आप को इतने पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, ये हम जानते नहीं है कि असली कारण है कि आत्मा को हम इसलिए पसंद करें कि आत्मा का आत्मा परमात्मा है, ये सबके प्रिय है, सभी के प्रिय है, इतने सबके प्रिय है कि वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, इतने प्रिय है, और केवल हमारे प्रिय वो नहीं है, वो कहते हैं कि क्योंकि उनके हम सब इतने प्रिय हैं, जो परमेश्वर है श्री हरि, जिनके अंश परमात्मा है, वो श्री मूल हरि जो सभी के अंशी है, अंशी समझते ना, अंशी अंश संबंध, अंशी होता है होल, अंश होता है पार्ट, ये अंश अंशी संबंध, जो अंशी श्री हरि है वो अपने अंश के प्रति इतने प्रेम रखता है, इतने उनको प्यार करता है कि हद कर, जैसे आप और हम कभी कोई अपने छोटे बच्चे को कितने प्यार करते हैं, अपने जो संबंधी को कितने प्रेम करते हैं, ये तो थोड़ा बहुत है, इतना कोई है ही नहीं, लेकिन उनसे कई करोड़ गुना, कोई निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं उसमें, इतने प्रेम करते हैं हरि, हरि अपने अंश को बहुत प्रेम करते हैं, केवल करते नहीं है, ये पुरुषोत्तम योग है, भगवद गीता में स्वयं भगवान कृष्ण श्री पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम, ये स्वयं आपने श्रीमुख से एक अध्याय कहे पुरुषोत्तम योग। इसी में सातवां श्लोक में कहते हैं, केवल प्यार करते नहीं अपने मुख से कहते भी हैं, बोलते भी हैं, बोलते हैं, मम एव अंश एव शब्द का अर्थ है सटनली निश्चित भाव रे दबा करके कहते मम एव अंश मामेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जीव हम लोग के लिए कहते हैं, बोले जीव फिर भी कोई नहीं है, ये सब मेरे अंश हैं, लेकिन क्या करूं मैंने, मुझे छोड़कर जीव अपना अपना लिए। कैसे जीव बने, बोले प्रकृति के साथ होकर के जीव बन गए, जीव भूत हो गए, ये सब भूत बने प्रकृति के साथ। मन षष्ठाणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, आपने मन इंद्रिय प्रकृति के गुण के स्पर्श में आकर के उनके साथ संग करके मुझे छोड़ करके भूत बने, सब जीव भूत। लेकिन मुझे दुख लगता है सब मेरे ही हैं बच्चे, इसलिए भगवान कहते मम एव अंश। कितने प्यार है भगवान के, इतने ममता है, वो बोलते हैं उसको प्रकट करके खुल्लम खुला बोलते हैं, ये मम एव। आप और हम किसको ममता कहते हैं, मेरी मेरा कहते हैं, ये तो नाटक है, थोड़ी देर के लिए है, कोई स्वार्थ में बाधा पड़े घटाओ तुम मेरा है, केवल स्वार्थ के लिए सब मेरी मेरा होता है ना। नहीं, पिता पुत्र भी उनके साथ मेरा बेटा मेरा बेटी करेंगे जब तक वो अपना स्वार्थ के अनुकूल है, जहां स्वार्थ में प्रतिकूल हुआ घटाओ, अभी तेज्य पुत्री कर देते हैं। हाँ, अरे और जो भाई भाई पति पत्नी तो तलाक है, तो दुनिया में सबसे बड़ी है ना, नहीं मन सबसे बहुत संख्या में ही तो हो रहा है नाटक, तो कोई अपना नहीं है सचमुच, ऐसे गारंटी देकर। लेकिन भगवान यहां कहते हैं मम एव और सनातन। बोले ऐसा नहीं कि दो दिन चार दिन के बाद जब मेरा बात नहीं मानेगा तू अलग है मेरे अलग, हमारा अलग कुकिंग करेंगे, बोले नहीं, ऐसा कभी कोई समय नहीं था जो तुम मेरा नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम मेरे नहीं हो गए, कि ऐसा कभी समय नहीं हो सकता जब तुम मेरा नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। हमेशा के लिए नित्य सनातन काल में तुम मेरा है और मैं तुम्हारा हूं, इसी को भगवान कहते हैं मम एव। ममत्व को जाहिर करते हुए एव शब्द लगा कर कहते हैं कि जीव मेरा है, हे जीव तू मेरे ही अंश है, तेरे अंदर प्रकृति का नाम निशान नहीं है, कुछ भी पहचान नहीं है, लेकिन तू बदमाश मान, मैं क्या करूं, मैं खोलकर बोल रहा हूं तेरे सामने आकर के, डाकबाजी यंत्र लाकर बोल रहा हूं तू बेटा तू मेरा है, लेकिन बेटा दिख नहीं रहे मेरे, भगवान को दुख लग रहा है। जैसे कोई सिंह का शावक, सिंह तो देखे होंगे ना टीवी में, चिड़ियाखाना में कोई देखे होंगे, सिंह जो होता है सिंह के बच्चा जो उनको सिंह शावक कहते हैं, अगर जंगल में कई जीव जंतु रहते हैं वो सिंह शावक बाय चांस वो सिंह से घूमते फिरते वो जंगल से कोई रास्ता गुम हो गया और भेड़िया के बीच में आ गया, छोटा सा बच्चा था सिंह का, अभी उनके गुण से प्रकट नहीं हुआ, हाँ छोटा कम दिन का बच्चा, और भेड़िया के बीच में आ गया, भड़िया के बच्चे थे उनके साथ में रहने लगा और खेलने लगे, भड़िया बोले भड़िया भी सोचे कैलकुलेशन रखे नहीं थे, उनका क्या बोलते हैं आधार कार्ड तो नहीं बना था, वो पता नहीं कर पाए, बोले हमारा एक बेटा शायद ऐसा ही होगा, पता नहीं बाल फल आ गया होगा शायद, वो भी तो काउंट नहीं करते ना, उनका तो सेट सेट बच्चे होते हैं, एक दो थोड़ी ना होते नर्सिंग होम में, ऐसा तो नहीं होते, तो भी काउंट नहीं पहचानने को शायद होगा, तो भड़िया के बीच में रह गया छोटा सा सिंह के बच्चा, और दो चार साल के बाद में बिल्कुल भेड़िया के चाल खेल उनके जैसा घास फास खाएगा सब करेगा, लेकिन भैया सिंह तो है ये, उनका जो रूप चेहरा और दांत तो वो तो सिंह ही रहेगा, भले स्वभाव बदल गया उनके साथ रह करके, घास खाने वाला हो गया घासाहारी, अभी मांसाहारी तो होना चाहिए स्वभाव, लेकिन क्या करे बचपन से छोटी बचपन से उन्हीं के साथ भेड़ियाओं के बीच में रहा, भेड़ चाल चलने लगा, लेकिन अब दो तीन साल के बाद में कोई सिंह आया, आकर देखा ना ये तो हमारे, ये तो इन गोष्ठी में नहीं है, वो आकर के उनको बुलाया, लकम भैया बोला आवाज करो भाई, उनके आवाज तो सिंह की आवाज निकलेगा। बोला देखो तेरे रूप मेरे रूप से अमित है, तेरे बोली मेरे बोली है, तेरे गर्जना मेरी गर्जना है, तेरे स्वभाव सब गुण मिलता है, तू भी बढ़िया नहीं, तू हमारा है मेरा है यार। उनको बोध करा दे, उनको अनुभव करा दे, बोध करा दे, कन्विंस कन्फर्म करा दे कि तुम इनके बीच में कैसे आगे घूमे फिरे, तुम तो हमारे ही है। इस प्रकार काम जैसे कोई सिंह आकर करता फिर उनको अपनाता है, तो भगवान यही काम कर रहे हैं भगवद गीता कह करके। भगवान स्वयं यही काम करने के लिए आकर अर्जुन के मध्य से कहते हैं कि हे जीव तुम मेरे हो, मम एव अंशः, तुम मेरे हो, ये प्रकृति के अंदर तू फंस गया, तेरे अंदर प्रकृति का कोई पहचान नहीं है, ये सब जड़ है, तू चेतन है, जड़ता तेरे अंदर नहीं है, ये शरीर फरी सब जड़ है, तुम ना तो शरीर हो ना बुद्धि हो ना मन हो, कुछ भी नहीं हो, तुम तो मेरे हो नित्य कल तक मेरे हो। थोड़ा सोचो तो सही कि इसको कोई मेरे हो कहने से कितनी दिल दहकता है ना, ना तो मेरे हो कहने के लिए। और भगवान स्वयं आकर बोलते हैं जीव तुम मेरे हो, तुम मेरे प्रकृति चेतन प्रकृति हो, मेरे जीव शक्ति हो, मेरे तटस्था शक्ति के अंश हो, विभिन्नांश हो, लेकिन प्रकृति के संस्पर्श में आकर के तेरी दशा हुआ है, प्रकृति के तेरे अंदर कोई पहचान नहीं, कोई संबंध हो भी नहीं सकता, ना हुआ है ना होगा ना हो सकता है, प्रकृति के साथ संबंध आपका नेवर एवर हो नहीं सकता, तो मेरे साथ संबंध देख लो खोल करके, है ना। भगवान ऐसे आकर के समझाते हैं, केवल मानते नहीं बोलते भी हैं, ऐसे भाव रखते हैं और ऐसे आचरण भी करते हैं और क्लेम करते हैं कि बेटा अभी तो इतने दुख पाया, अभी तो आ जाओ, अब तो आ जाओ, यही समझाते हैं, क्योंकि तो मेरे अंश है। तो जब समस्त प्राणी भगवान के हैं तो भगवान किसके साथ द्वेष करेंगे बताओ, किसके साथ द्वेष करेंगे, किसके साथ प्रिय अप्रिय करेंगे। बोली थारे इतने असुर, बोली सब असुर फसुर पना भगवान से कुछ नहीं है, इसीलिए तो जो जानकारी है वो असुर को भी भगवान बद्ध करते हैं, जो उनके कल्याण करते हैं भक्त लोग जो प्राण उनको भी यही कल्याण करते हैं, भगवान से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब उन्हीं के ही है। लेकिन ये जो नाटक सब हम लोग करते हैं, असुर बनते हैं ये बनते हैं, बोले ये सब माया के प्रभाव से आकर के हमारे ही ये प्रकृति स्वभाव, ये सब माया के प्रभाव, माया के कारण ये सब गड़बड़ हमारे अंदर होता है, नहीं तो वास्तविक उनके ओर से कोई कमी नहीं, सभी के प्रति समान दृष्टि को ही ये पिता है, केवल पिता नहीं, पिता माता धाता पितामह जो भी, कभी कभी हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव, जब सब तुमको बोल देते हैं, कुछ मानते कुछ नहीं है, बोलते केवल है, हाँ इतने सारे बोलेंगे, बोलेंगे ये मेरे मम्मी ये मेरे पत्नी है, उन्हीं के सामने कहेंगे, कहीं तो कविता में बोलेंगे तुमेव माता तुमेव तुमेव सब कुछ तुमेव, अब भाव मन में भाव रखेंगे सब हमेव, भगवान क्या कहेंगे, वो तो अंतर्जामी है ना, वो तो वाणीजामी नहीं है, वो तो अंदर से जानते तेरे भाव तो क्या कह रहा है क्या सोच रहा है, बोले तू मेरे साथ डुप्लीकेट क्यों कर रहा है, मुझे पता है यही चल रहा। तो इसी को भगवान शंकर अपने पत्नी पार्वती को समझाने, देवी ये एक मेरे प्रभु के अनुचर का ही गुण देख करके आश्रय मत करना, ये हमारे जितने पार्टी के लोग हैं ना सभी ऐसे ही, हमारे पार्टी के जितने लोग होते हैं सबका ही लक्षण होता है, हाँ सब, क्योंकि हमारे प्रभु के साथ जुड़े हैं ना, प्रभु का गुण ही ऐसा है, जिनके साथ संबंध होने से ही गुण आएगा ही, इतने समता है प्रभु की, कोई प्रिय अप्रिय नहीं है, ये बात केवल शंकर जी कहते हैं, ऐसे बात नहीं है, भगवान कृष्ण भी स्वयं कहते हैं, वो प्रभु भी स्वयं कहे भगवद गीता में 9:29 में, समो अहम सर्वभूतेषु नाहं द्वेष न प्रियः नाहं द्वेषस्ति न प्रियः, मेरा ना कोई द्वेषी है ना कोई प्रिय है ना प्रिय कोई नहीं, मैं किसी के बाद द्वेष कर ही नहीं सकता हूं, कोई मेरा प्रिय हो ही नहीं सकता, मेरे ऐसे को ही नहीं सकता, समो अहम मैं सबके लिए समान हूं, सर्वभूतेषु सभी के प्रति मैं समान हूं, ना तो कर्मी पराया कोई है ना कोई अपना है, खुल करके भगवान कहे उसके जस्ट दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, समो अहम सर्वभूतेषु नाम द्वेषस्ति न प्रियः, ये कहने के तुरंत बाद कहते हैं, क्योंकि अर्जुन तो भगत है ना, वो बोलेंगे सर ये कहने से पहले फिर अपना क्लियर कर देते हैं, ये तु भक्त्या ये भजंती तुमांग भक्त्या मई ते तेषु चपि अहम, भैया कंट्राडिक्ट हो गए। सेकंड लाइन में बोलते हैं कि जो मेरे भक्तगण मेरा भजन करते हैं प्रेम से वो मेरे में उनके, अरे भैया आप बोलते हैं कि सबके समता है सबके लिए समान है, इम्पार्शियल ना, यस इम्पार्शियल ये जनरल रूल है, ये सर्वसाधारण नियम है जो लॉ बुक में लिखा है, जो सर्वसाधारण नियम सबको पता है, धारा वही है कि मैं इम्पार्शियल हूं, मेरा कोई पार्शियल नहीं किसी के प्रति, ना तो मेरा कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है ना कोई द्वेष है ना कोई नहीं है, ये तो जनरल पब्लिक रूल है। लेकिन हम ना घर में भी रूल थोड़ी मानूंगा, जैसे आप रोड में जाते हैं भाई ड्राइव लेफ्ट बाएं तरफ से चल रहा होगा, आप बड़ी सड़क जो राज रास्ता पर जाएंगे एक्सप्रेस हाईवे में, चाहे पैदल में जाओ चाहे साइकिल में जाओ चाहे फोर व्हीलर टू व्हीलर नो व्हीलर किस में भी जाओ, ट्रैफिक नियम पालन करना पड़ेगा ना, लेफ्ट साइड में जाएंगे लाल बत्ती होने से रुकेंगे हरी बत्ती होने से, करना पड़ेगा ना, नहीं तो डरना पड़ेगा। लेकिन आप घर में आ गए, घर में इस कमरा से इस कमरा में जाना है किचन में जाना है, ऐसे पालन करेंगे क्या, नहीं लेफ्ट साइड झोंककर जाऊंगा कि जाऊंगी, नहीं यार मेरा घर है, मेरा घर का आंगन है, किसी के बाप का थोड़ी ना है, यहां कौन सा मैं ट्रैफिक में फॉलो करेगा, यहां नहीं चलेगा। ठीक भगवान यही बात कह रहे, बोलते ये तो सर्वसाधारण नियम है सबके लिए नियम है, लेकिन मेरे घर के अंदर मेरा जो भक्त है मेरा साथ उनका अपनापन है, कैसा ना वो मेरे में उनका, ये भजंती तुमांग भक्त्या मई ते तेषु च अपि अहम्, वो मेरे है मैं भी उनका हूं। जैसे कोई हाई कोर्ट के जस्टिस, हाई कोर्ट के जो जस्टिस है जज, वो जब अपने यूनिफॉर्म पहन करके काला कोट पहन करके जा करके हाई कोर्ट के जस्टिस चेयर पर जब बैठ जाता है, तो कोई भी उनके बिरादर को उनके परिचित लोग भी आए योर ऑनर बोलना पड़ेगा, है ना, नहीं तो भाषा है, नहीं तो पुलिस बांध लेगा आपको, योर ऑनर बोलना पड़ेगा उनको, चाहे बाप भी उनका जाए वो भी खड़ा नहीं होगा, उनको योर ऑनर बोलना पड़ेगा, है ना, नहीं हाँ। और वो मुख में जो वाणी वाणी निकलेगा चेयर में बैठे हुए लॉ हो जाएगा, आईन बन जाएगा, उसका मुख से जो बात निकला वो आईन कानून बन गया, हाईकोर्ट ऑर्डर, छोटी मोटी बात नहीं, हाईकोर्ट ऑर्डर, आप कैसे उसको संक्रमण करेंगे, हाईकोर्ट ऑर्डर उच्च न्यायालय का अध्यादेश है, ऐसे हो जाता है जो बोलेगा। लेकिन वही जस्टिस आप अपना 5 बजे कोर्ट बंद हो गया छुट्टी हुआ घर में आया अपने यूनिफॉर्म उतारा घर में अपना जो घरों ड्रेस कोई पहनते हैं, घरों ड्रेस क्या पहनते हैं हम लोग, गमछा पहनते हैं लुंगी या कोई ट्राउजर जो पहनते हैं, पहन करके अपने बच्चों के साथ वही जो बात कहेगा वो आईन चलेगा क्या, बच्चा उनके ऊपर चढ़ जाएगा बोला तुम घोड़े बन में चलाता हूं चल, उनके पत्नी उनको क्या करे कैसे बातचीत करेगी, बच्चे उनके वो बिल्कुल घर की बात है ना, यहां को ये आईने कानून दृष्टि नहीं चलेगा, वो 10 से 5 जब वो चेयर में बैठूंगा तब ये चलेगा, फिर घर में ऐसा नहीं चलेगा, घर में तो डांट देगी हट यहां से, वो डांट खाना पड़ेगा कैसे, तो घर का वातावरण अलग है। तो भगवान यही कहते हैं, बोले मेरा भी ये घर की बात है, मेरे जो भक्त लोग होते हैं वो मेरे परिवार के हो जाते हैं, वो मेरे परिवार वाले हो जाते हैं, जो हमेशा मन मुझ में लगाते हैं, जो मेरे नाम जप करते हैं, मेरे गुण सुनते हैं, मेरे लिए खाते हैं, मेरे लिए जीते हैं, मेरे लिए सब कुछ करते हैं, वो तो मेरे हो गए, मेरे परिवार का हो गया। तो मेरे परिवार के घर के अंदर फिर ये रूल लगाऊंगा क्या, नहीं, ये आईन तो जनरल पब्लिक के लिए है, ये तो ऑफिस ड्यूटी ऑफिशियल रूल है, लेकिन प्राइवेट में ये सब नहीं, प्राइवेट में क्या है ना, मैं उनका वो मेरे, भगवान खोल खोल कर बता दे, बोले अर्जुन इसीलिए डरो मत। अष्टम अध्याय भगवान बोले देखो मरना तो सबको पड़ेगा, लेकिन बड़े बड़े जोगी ध्यानी ज्ञानी वो मरने के लिए चुनते हैं, सामर्थ्यवान है कि उत्तरायण हो दिन के समय हो और बिल्कुल ब्रह्म भू मध्य ऐसे उद्धगति से इस प्रकार से प्राण निकले इस मरे इस भ्रुवन मध्य समय कुछ सुन करके अर्जुन वर्मा को देखने वाला प्रभु हमको तो पता नहीं मैं ये सब तो कुछ प्रैक्टिस तो किया ही नहीं अब कब टाइम होगा मुझे कैसे पता चलेगा पता नहीं हम लड़ाई में किम मर जाए कहाँ मर जाए क्या है सब आप बोलते हैं कि उच्च गति अर्जुन जब ऐसे देखने लगा ये क्या बताते हैं मरने भगवान तो अर्जुन को डर में तो अर्जुन ये तो बता दिया ये तो नियम है जो ध्यानी ज्ञानी वानी जोगी उन लोग करें लेकिन तुम जैसे मेरे भक्त उनके लिए कोई बड़ी थोड़ी पड़ता है नित्य युक्त जोगिन जो मेरे भक्तगण है तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त जोगिन बोले ये बात तो उनके लिए है लेकिन जो मेरा भक्त है मेरा भक्ति करते हैं भजन करते हैं उनके लिए तो मैं सुलभ हूं सुलभ शब्द सुलभ तो समझ लो ना सब ट्रेन स्टेशन में बस स्टैंड में सुलभ शब्द लगा हुआ है जैसे भी 5 रुपया देना पड़ता लेकिन सुलभ है तो मतलब आसान से मिल जाता तो भगवान कहते हैं मैं मेरे भक्त के लिए आसान से सुलभ हूं छुट्टा पैसा भी देना नहीं पड़ेगा ऐसे सुलभ हूं कैसे भक्त के लिए ना हमेशा जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं नित्य युक्तस्य जोगिनः उनके लिए मैं सुलभ हूं उनके लिए कोई उत्तरायण दक्षिणायन यदि रात कुछ नहीं फर्क पड़ता ये हो इस जगह इस जगह कुछ नहीं फर्क पड़ता वो कहीं भी कैसे भी अवस्था में किसी प्रकार भी रहे क्योंकि मेरे हैं ये मेरा बनता है दायित्व मैं जाकर उनका काम करूं उनको कोई पड़ी नहीं है ये मुझे मेरा चिंता है भगवान बोलते मेरा चिंता है क्योंकि मेरे परिवार के आदमी हैं मैं चिंता करूंगा बदला मेरा होगा तो भगवान ऐसे अपना मानते हैं केवल अपना मानते नहीं अपना बोलते हैं करते हैं और सबको बतलाते हैं ये बात महादेव जी पार्वती को बताते हैं ये मेरे प्रभु के स्वभाव ये मेरे प्रभु के गुण जो उनका बनना चाहता है एक बार उनका बनने के लिए चाहा तो भगवान बोलेंगे बनो यार सब प्रकार से व्यवस्था करके अपना बना लेंगे और कभी नहीं छोड़ेंगे कभी नहीं छोड़ेंगे सुधार देंगे बुद्धि लेकिन हमारा क्या कमी यही होता है हम उनके बनने के लिए कभी इच्छा ही मन में नहीं करते बल्कि और दूर दूर जाने की इच्छा करते हैं इसलिए प्रभु केवल दुखी दुखी होते हैं बताओ मेरा लड़का सुनता नहीं मेरा मानता नहीं कितने कष्ट भोग रहा है मैं बोलता हूं बेटा आ जा कोई जरूरत नहीं ये सब नौकरी करने का ऐसे धंधाबाड़ी आओ मेरे पड़ा है संपत्ति खा कर तरह 14 पीढ़ी चला जाएगा कुछ नहीं पड़ेगा आओ इधर लेकिन मर रहा है आ ही नहीं रहा ये दशा लेकिन कभी कोई केवल मन करे कि पापा दुख हो गया नहीं बेटा वो आ करके गोद में उठा ले आप केवल उनके ओर मुंह कर दे दो बातें बोल दे कि पापा बहुत कष्ट हो रहा है बस उनको इतना सहन नहीं हो सकता वैकुंठ से डायरेक्ट दौड़कर आएंगे और गोद में उठा ले हमको केवल इतना प्रकाश करना है अपने दर्द को प्रकाश करना है और उनके ओर देखना है बस केवल इतना करना इसी के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं हम इतने अनंत जन्म से कष्ट भोग रहे हैं बोले कष्ट उनके विमुख होकर पा रहे हैं और कैसे काम बनेगा बोलते हैं कि यदि साधु गुरु वैद्य यदि कोई साधु गुरु शास्त्र के सहायता लेकर के थोड़ा समझ आ जाए और हरि की ओर मुंह मोड़ दें बोले बाकी सब हरि कर लेगा बस इतना करना है जस्ट टर्न योर फेस टुवर्ड्स हिम केवल हरि के ओर मुंह करना है बोले पापा बस बाकी बताना भी नहीं पड़ेगा वो समझा है सब हम मूर्ख नहीं जानते वो सब जानता है क्या करते हैं अंदर बाहर सबको पता है उनको उनकी भ्रमित नहीं होंगे उनका फॉरगेटफुल नहीं है नित्य काल तक सब उनकी आदा है जानाति अतीतम वर्तमान भविष्यत सबको पता है तो इसलिए उनको लिख करके बताना पड़ेगा बोलना पड़ेगा ये कुछ नहीं करना पड़ेगा जस्ट मुंह मोड़ करके उनको देखना आशा से हेल्पलेस थोड़ा हेल्प करने की इच्छा से देख लो मुंह मोड़ लो दैट्स इट इतने में ही वो आ करके हमको कर देंगे लेकिन हम इतने बद्ध हद है इतने भी नहीं करते हैं इसलिए कम से कम पुरुषोत्तम मास में इस ब्रजमंडल में श्री वृंदावन धाम में पुरुषोत्तम क्षेत्र में ये भगवान के सामने आज ही अब कसम खाना चाहिए, प्रभु मैं आपका आमी कृष्णदास ऐ विश्वास कर ले आर दुख ना, इतना विश्वास कर लो दुख खत्म, भाग जाएंगे सब छोड़ कर। शोक मोह भयापहा, शोक मोह और भय अपहृत हो जाए, भाग के चले जाएंगे। अरे हरि क्या, काल में बता रहा था हरि क्या आएंगे, हरि के नाम ही ऐसे कमाल करे भाग जाए सब। फिर बाप रे बाप, नाम सार का ले रहा है हाँ। वो साहब ऐसे हैं, तो इसलिए हमको केवल अभी तक तो जीवन में किए नहीं, कम से कम ये सौभाग्य से ये पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम क्षेत्र में जब आए तो पुरुषोत्तम के सामने आज ही ये कसम खाइए, वादा कीजिए, तो आज ही फिर जब वापस जाएंगे तो टेंशन फ्री होकर जाएंगे। शोक मोह भयापहा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की।